أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. كتاب الحدود هم کر رہے ہیں اور اس میں الحمدللہ جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں. کی آواز نہیں آ رہی؟ اللہ ون لے راجون. جی ان ریڈ ڈاٹ کر لیں ان شاء اللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ، شکر اللہ تعالیٰ کا، الحمد للہ. چلیں ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں یہاں پہ احادیث ہم آج کی. اور اچھی بات یہ ہے کہ الحمد للہ ہم جو اپنا تفسیر میں اس دفعہ کر چکے ہیں اس جمعے کو، وہی آیات جو آیت نور سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں الحمد للہ، وہی یہاں پہ تقریباً ہے. تو بہت ہی اچھا ہمارا یہ ساتھ ساتھ ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. وہ زیادہ سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا، امید ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصاف فرمایا جب ایک مخزومیہ عورت فاطمہ بنت اسود نے چوری کی تھی، اور اس کے ہاتھ کاٹنے کا مرحلہ آیا، اور سفارش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، اور اس کے اوپر فرمایا کہ پچھلی امتیں ہلاک ہی اس لیے ہوئی تھیں کہ جب ان کا کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کمزور غریب کوئی ایسا جس کے پاس کوئی سفارش نہ ہو وہ چوری کرے یا کوئی اور جرم کرتا تھا تو اس کے اوپر اس کو سزا دی جاتی تھی. یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے ہاں اگر مسئلہ ہی دیکھا جائے تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے انصاف قائم نہیں ہوتا. جب بھی انصاف کا مرحلہ آتا ہے تو ایسے لوگوں کو ہمیشہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور یہ انصاف کے منافی ہے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی جو بھی سزائیں ہیں وہ کسی کے ساتھ بھی ڈیفرینشیٹ نہیں کرتی کہ کوئی پریزیڈنٹ کی بچی ہے، کوئی صدر وزیر کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا بھی ہے، اور کتنے ہی بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے یا کتنا ہی امیر ہے. اب یہاں پہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ آپ کا رول کون سا ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا ہے. اور اس میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا قانون لگائیں کہ جو ہے اگر میری بیٹی بھی چوری کرے، یعنی خود فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہ کسی کو کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ آ کے اپنے گھر والوں کے لیے بھی ایسا چاہیں گے یا کچھ ہے، نہیں، خود فرمایا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو اس کا بھی یہی ہوگا. اور اس سے لوگوں کو ترغیب یہ دی جاتی ہے کہ انصاف سب کے لیے، آج ایسے انصاف کی ضرورت ہے، اور ہر ایک آج بھی اس چیز کو دیکھ کر اور اپریشیٹ کرتا ہے. اور جس ملک یا جس جگہ پہ ایسا قانون ہو، حقیقی انصاف وہیں قائم ہو سکتا ہے، ادروائز کوئی انصاف نہیں ہوتا. یہ کوئی انصاف نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو تو سزا دی جائے اور کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے بیسڈ آن یہ کہ ان کا کیا اسٹیٹس ہے معاشرے میں. اچھا جی، اب ہم نے یہاں پہ ایک اور پڑھی تھی، ناسخ اور منسوخ کی قسمیں ہم نے پڑھی تھی. ذرا مجھے یہ قسمیں بتائیں گے، کیونکہ لاسٹ ٹائم اس کے اندر بھی وہاں پہ کچھ کوشچنز آ رہے تھے. میں چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کو اچھی طرح یہ معلوم ہو. ناسخ اور منسوخ کی قسمیں، جی یاسمین اقبال، آپ بتائیں گے ناسخ اور منسوخ کی کیا قسمیں ہیں یا کیا اس کا لا رہا ہے؟
منسوخ تو وہ ہیں جو کچھ اس میں تلاوت میں رہیں پر قرآن میں نہیں ہیں، وہ جیسے رجم کے آیات جو ہے حکم رہا. ایک میں اس کی آواز کم کر دوں. جی السلام علیکم. منسوخ وہ آیات ہیں جو قرآن کی تلاوت میں تو نہیں ہے پر ان کے حکم باقی رہے ہیں، और उसकी जहाँ हमने पढ़ा था तीन किस्में थी उसकी जो ये आयात थी, एक तो तिलावत में नहीं थी और एक जो थी मगर उनके हुक्म जो थे वो मंसूख हुए थे। मुझे एग्जैक्टली उस्तादा वो याद नहीं है मगर मैंने पढ़ा है ये, आई एम सॉरी, मुझे पूरा पक्का याद नहीं इस बात का।
तो अब आप नोट कर लीजिए इसको
इंशाल्लाह।
ज़्यादा, कि देखें तीन तरह की नासिख और मनसूख की किस्में हैं। एक नंबर वन ये चीज़ है कि देखें कोई हुक्म भी उठ गया और उसकी आयत जो थी वो भी उठ गई। हुक्म से मतलब ये है कि उसका जो अमल है वो भी उठ गया और वो आयत भी उठ गई, ठीक है। एक तो ये है, यानी अब कुरान करीम में ना उसकी आयत है और ना उसके ऊपर अमल है, सही। नंबर टू ये है कि अगर उसकी आयत मौजूद हो लेकिन उसके ऊपर अमल अब नहीं है, ठीक है, ये भी एक मंसूख की किस्म हो गई। इसी तरह एक ये है कि आयत तिलावत से तो उठ गई लेकिन उसका अमल मौजूद है, यानी ऑपोजिट हो गए, नंबर टू और नंबर थ्री ऑपोजिट है। अब पहले वाला तो यह है कि दोनों ही चीजें खत्म हो गई, दूसरा यह है कि अमल में हो और आयत ना हो, तीसरा यह है कि आयत हो और अमल में ना हो, यानी जो दूसरा और तीसरा बिल्कुल उलट एक दूसरे के। और रजम की जो सजा है ये आयत उठ गई है लेकिन इसका हुक्म मौजूद है, ये नासिक की वो किस्म है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या कोई कौन मुझे बताएगा कि सबाहत आप बताएंगे कि इस चीज की क्या दलील है कि तौरात में रजम की सजा मौजूद थी?
जी उसकी ये जो हदीस थी कि एक यहूदी आया था आप के पास और यानी वो लोग सजा के लिए आए थे और यानी रजम का केस था उनके पास। वो जब आए तो उन्होंने कहा कि आप ने पूछा कि तुम्हारे पास तुम्हारी किताब में क्या है, तो उन लोगों ने कहा कि हमारी किताब में सिर्फ आई थिंक लानत मलामत करना है और थोड़ी बहुत मतलब लानत मलामत करना है, कोई ऐसी सजा नहीं है। और फिर आपसे लोग हमने कहा तौरात मंगाई थी और कहा था कि उसको पढ़ के सुनाओ, तो उन लोगों ने उस आयत पे हाथ रख के ऊपर और नीचे वाली तिलावत कर दी थी। लेकिन फिर एक और साहब भी थे जो कि मतलब अभी मुसलमान हो चुके, उनको पता था, तो उन्होंने वो हटवा के वो पढ़वाया तो वहां पे वो आयत मौजूद थी।
शाबाश, वेरी गुड। ये आप को अगर कोई पूछे कि इसकी क्या दलील है कि तौरात में ये आयत मौजूद है, जैसे मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि आज भी तौरात में ये मौजूद है, और ये अब आप हर दलील के तौर पे जो हदीस देंगे वो 1104 नंबर हदीस है, जिसमें कि उन लोगों ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकम अपना मान लिया हुआ था ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इन चीज़ों के फैसले करेंगे, तो आप के चलो इस तरह से हम इस सज़ा से छूट जाएंगे, वो अपने तो काजी के पास गए नहीं, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि मालूम था कि तौरात में ये है तो फरमाया तौरात लेकर आओ। और अब्दुल्ला बिन सलाम जो थे ना वो उनके आलिम थे, जब यानी यहूदी यहूदियों के आलिम थे और वो बाद में मुसलमान हो चुके थे, तो अब वो मुसलमान हो चुके हैं, उनको तो पता था कि है इसके अंदर, तो उन्होंने फिर फरमाया कि अपना हाथ उठाओ, तो जब हाथ उठाया तो नीचे रजम की आयत थी, यानी वो छुपा रहे थे। तो इससे पता चलता है कि रजम की आयत तौरात में मौजूद थी और इस्लाम ने इसको कंटिन्यू किया, इसलिए इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं थी कि यहाँ पे वो हुक्म वैसे का वैसे ही आगे चल रहा, जैसे लास्ट टाइम किसी ने क्लास में सवाल भी किया था तालीमुल कुरान के कोर्स में कि क्यों ये उठाई गई अगर इसे इतना ही फितना पैदा होना था। देखिए कई चीज़ें हमारे लिए भी एक टेस्ट होती हैं अल्लाह की तरफ से, और ये वन ऑफ देम है। जब इसमें वाजे आयत आ वाजे ये हदीस आ गई है कि हजरत उमर ने जो फरमाया कि ये ना हो कि बाद में लोग ये कर समझने शुरू हो जाएं कि रजम है ही नहीं है, मुझे डर है इस बात का कि आगे आगे लोग ऐसे करने लगेंगे, तो इससे ही पता चलता है कि ये लोग बाद में ये देखिए लूलू अल मरजान में है ये, यानी ये बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, फिर इसके बावजूद इसके ऊपर इतराज करना, ये वही करेगा जो हदीस को नहीं मानता। इस तरह व्हेन दे यूज्ड टू कम टू सी अस दे हैव टू गिव सम हदिया, सो इस जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आयत भी मौजूद है लेकिन इसका हुक्म मंसूख हो चुका है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, नसरीन आप बताएंगी कि किन तीन सूरतों में ये सजा दी जाएगी, किन तीन सूरतों में सजा दी जाएगी रजम की? जी नसरीन
जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी
रजम की सजा ये है कि उसमें ये शादीशुदा इतना पूछ रही है।
नहीं, साबित कि किन तीन सूरतों में ये सजा साबित हो जाएगी किसी पे? शराश्ता कालिया आप बताएंगी, आवाज भी नहीं नसीन आपकी ज्यादा आ रही। राश्ता कालिया आप बताएंगी।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम।
तीन आपने कहा तीन, किन तीन सूरतों में जब गवाह मतलब कोई गवाह मिल जाए, चार गवाह हो कोई गंदा काम करते हुए देखें, और इसके अलावा चुस्ता रहेगी याद है।
जी ज़ायदा बेजाद आप बताएंगी। जी जी ज़ायदा बेजाद आप बताएंगी।
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। पहला तो ये कि कोई जिना करे फिर उसका एतराफ भी कर ले, और दूसरा ये है कि कोई चार बार कहे कि मैंने ऐसा किया और ये वो अपने खिलाफ पता नहीं,
यानी ये तो इकरार ही हो गया ना जो आपने अभी बताया, वो ही वाली बात ये हो गई ना, राइट?
जी 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 जी
बात कर ले।
और
ये एक बात हो गई। नंबर
नंबर टू ये है कि वो खुद कहे, वो जो उनका बताया था जिनसे ये गुनाह हो गया था, फिर बच्चे की वलादत हो गई थी तो उन्होंने कहा था कि अब बच्चा दूध पीने वाला हो गया, लेकिन मुझे इसका मतलब सजा मिल जानी चाहिए ताकि आखिरत में छूट मिल जाए, तो उनको ये सजा मिली थी।
तो वो तो उनका खुद ही का इकरार हुआ ना।
जी, और कोई चार गवाह कोई आके कहे कि हमने देखा ऐसा।
जी। अच्छा, चार गवाह, जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा, चार गवाह आके या तो ये गवाही दें कि हमने ये, हम ऐनी शाहिद हैं इसके, हमने ये अपनी आंखों से देखा है, तब ये होगा नंबर टू, या फिर खुद एक इंसान चार दफा इस बात को दोहराए, यानी उसकी चार गवाहियां ही हो गई ना फिर ये, वो हो जाए, या फिर हमल जायरो। आप ये नोट कर लें 1101 हदीस में एंड में है ये तीनों शराइत, ठीक है? और अच्छा, यहाँ पे ना लिखें, पेल टॉक पे ना लिखें, क्योंकि फिर उसका फायदा नहीं है। अच्छा, ये अब आप बताएं कुलसूम कि ये सजा कौन देगा?
जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम।
जी ये इस्लामी रियासत का जो हाकिम होगा वो देगा, ये नहीं है कि मुआशरे में से कोई भी उठ के लोग उसको सजा देना शुरू कर दें या कुछ, है ना?
हाकिम से मतलब, यानी आपका मतलब अदालत है या कोई और?
जी अदालत में ना, यानी जो,
और अगर
अदालत के लोग जो
आज है तो इस्लामी अदालत नहीं है फिर?
तो फिर ये कि जो हुकूमत है वो करेगी।
हुकूमत तो अदालत ही होती है ना, अदालत हुकूमत अदालत एक ही चीज होती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मसलन हमारे मुल्क में अगर ऐसी कोई इस्लामी अदालत नहीं है तो क्या सदर सजा देगा? ये कह रहे हैं
तो फिर ये नहीं, अदालत ही करेगी, अदालत का ही फिर इख्तियार है ना कि वो फैसला करे इसमें, क्योंकि इसमें आम लोग तो नहीं कर सकते कि कोई भी उठ के इसमें सजा देना शुरू कर देना।
हाँ, अगर अदालत ही नहीं है फिर
इसका नहीं, फिर मुझे पता कि अगर अदालत नहीं है तो फिर कौन करेगा।
अच्छा चले देखते हैं अब हम ना। जी नाज़िन आप बताएंगी।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरी आवाज आ रही है?
जी जी
आवाज। अदालत तो वही हुई ना कि इस्लामिक गवर्नमेंट हो अदालत, तो वो सेम चीज है। अगर नहीं हुई तो फिर नहीं होगा, कोई भी उठ के नहीं कर सकता कि कोई ग्रुप उठ के करने लगे या
फिर मेरा
मस्त है कि
किया जाएगी। ये मेरा सवाल है कि फिर क्या किया जाएगा? इसका क्या?
अगर कोई ऐसे आके क्या पकड़ा जाए या इकरार करे तो क्या किया जाएगा, ये पूछ रही है।
नहीं, इकरार तो वो किसके सामने करेगा, क्या उसको लोगों में जाके इकरार हाँ, करना
चाहिए? वही, किसी के सामने नहीं कर सकता ना। अब जब इस्लामिक शरीयत नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ नहीं किया जाएगा।
सही। अच्छा, अब इसका मैं आपको हल बताती हूँ कि देखें, जैसे कि आज के वक्त में हमें प्रैक्टिकली भी चीज़ों को देखना है कि क्या आज के वक्त में क्या होगा। फॉर एग्जांपल, अब कोई मुझे ईमेल लिखती है कि भाई ऐसा ऐसा मेरे से गुनाह हो गया, ठीक है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं उसको क्या बताऊँगी, बताएं, खुद सोचें कि मैं उसको नहीं सकती कि आप जाएँ कि अदालत के अंदर आप जाके ये करें, कोई मसलन इस मुल्क में रहता है या कुछ है, किधर जाके वो क्या कहेगा, उनको अदालत को कहेगा कि मैंने ऐसे कर लिया, तो यहाँ पे तो कुछ भी इस चीज़ का नहीं है। इसके लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि वो अल्लाह के सामने रोए, एतराफ़ करे, इसके ऊपर तौबा इस्तग़फ़ार करे जितनी कर सकता है, इस गुनाह का एतराफ़ अल्लाह के सामने करे, लोगों के सामने नहीं, कि लोगों में बैठ बैठ के इस चीज़ की तशहीर करे, हमें तो मैंने तो ऐसे किया। कुछ लोगों को बहुत शौक होता है, औरतें तो नहीं, मर्द ज़्यादातर, उनको ये शौक होता है कि वो इस चीज़ में भी अपनी बड़ाई महसूस करते हैं कि हमने ये काम किए हुए और इतनी इतनी औरतों के साथ हमने ऐसे काम किए हुए, और ये हमारे, यानी चाहे वो अपनी शादी से पहले के किस्से हों, शादी के बाद के किस्से हों, किसी तरह के भी किस्सों को इस तरह बयान करना जो है ना, वो गुनाह को डबल कर देता है। अब वो पता है कि जब एक इंसान से गुनाह हो जाता है तो अल्लाह ताला उस पर पर्दा डाल देते हैं, एक दफ़ा होता है, दो दफ़ा, अल्लाह ताला उस पर पर्दा डाल देते हैं। लेकिन हदीस में आता है कि ये अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा गुस्सा उस बंदे पे आता है कि जिसके गुनाह पे अल्लाह ताला रात को पर्दा डाल दे, वो रात को कोई गुनाह करता है, अल्लाह ने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया और सुबह को उठ के वो लोगों में बयान कर रहा है मैंने रात को ये किया था। ये गुनाह के ऊपर एक चोरी और सीनाजोरी, वो वाली बात है, ये गुनाह के ऊपर और दलेर हो जाना है, गुनाह के ऊपर शर्म ना आना, गुनाह को ढिटाई से करना, गुनाह को आगे बयान करना, उसकी शोहरत करना और उसके ऊपर फख्र महसूस करना, ये एक, यानी एक पहले गलती हुई है तो उसको बजाय गलती मान के, और एक इंसान से गलती हुई, जैसे वो गामदी औरत की बात आती है कि देखिए गलती हुई और वो शी वॉज रिग्रेटिंग और वो इस पे शर्मिंदा थी और वो अपने आप को पाक करना चाहती थी, ये उल्टा पाक करने के बजाय आज के दौर में अगर आप इस चीज को देखें तो इस चीज को उल्टा एक फखर का बाइस समझा जाता है, इसको ये समझा जाता है कि हम बहुत बड़ी कोई अच्छा कारनामा कर रहे हैं, तो ये बहुत सख्त गुनाह है, बहुत सख्त गुनाह। अगर इस्लामिक अदालत नहीं भी है तब भी किसी को राइट नहीं है। सिर्फ एक मिनट होल्ड कर लें। जी माजरत है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तो इस चीज़ को ये समझ लेना चाहिए कि जब कोई गुनाह हो जाए, चाहे इस नौयत का हो या कोई भी गुनाह हो, उसकी तशहीर ना करें। जैसे बाज़ औरतें इस चीज़ की बहुत तशहीर करती हैं कि हम पहले बड़ा बेपर्द फिरते थे, हम ये फैशन करते थे, हम ऐसे करते थे, तशहीर ना करें। तशहीर करनी है तो सिर्फ अल्लाह के सामने, उससे तौबा इस्तग़फ़ार करें और उस पर निदामत महसूस करें। क्या आप अपनी किसी गंदी बात को किसी को बताना पसंद करते हैं? चाहते हैं कि कोई देखे आपको किसी गंदी चीज़ के अंदर? तो फिर ये भी गंदगियाँ हैं, गुनाह जो हैं वो गंदगियाँ हैं। जब तक आप उसको गंदगी समझेंगे नहीं, उसको बुराई समझेंगे नहीं, तौबा किस बात पे है? फिर हम कहते हैं हमने तौबा भी कर लिया, लेकिन साथ साथ हम फखर से बताते भी रहे। तो आज के दौर में अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसी चीज होती है तो वो किसी के पास भी नहीं जाएगा, क्योंकि इस्लामिक अदालत नहीं है आज, इसका कोई जरिया नहीं है कि किस तरह से पाक होगा वो, मर्द हो या औरत हो, उसको फिर अल्लाह के सामने तौबा इस्तगफार करनी चाहिए। तो फिर क्या होगा? जी नाइक सिद्दीकी, इसका आप बताएंगे फिर क्या होगा, तौबा इस्तगफार का क्या है फिर आगे?
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
वालेकुम अस्सलाम
वरहमतुल्लाह। आपसे एक बात करना, आपने तीन शर्तें बताई थी, तीसरी शर्त थी कि हमल जाहिर हो जाए।
जी
ये रह गई, इसी बार का बता दो।
जज़ाकल्लाहु खैरन।
अच्छा आप क्या कह रही हैं, क्या सवाल?
तौबा इस्तगफार कर ली तो अब क्या है?
तो बेइंतहा तौबा इस्तगफार करें, पलट आए और कभी दोबारा वो उस तरफ ना जाए, और तीसरी बात बेइंतहा सदका करें, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के माफ मांगे, अल्लाह मुझसे गलती होगी मैं कभी नहीं करूंगा, दोबारा तरफ कभी ना जाए।
अब क्या उसका गुनाह मिट जाएगा?
अल्लाह की मर्जी, अल्लाह चाहे तो माफ करे, अपनी तरफ से कोशिश पूरी करें, ये तो अब अल्लाह के हाथ में ना। अगर सजा मिल जाती दुनिया में तो गुनाह अल्लाह ने कहा मिट जाएगा, लेकिन अगर जब सजा नहीं मिली तो फिर अल्लाह के हाथ में, अल्लाह से उम्मीद रखें, अल्लाह ताला जरूर माफ करेगा इंशाल्लाह।
शाबाश, यानी फिर उसके बाद सारी जिंदगी इसके ऊपर तौबा करते रहें। देखिए कन्फर्मेशन किसी के पास नहीं है इस दुनिया के अंदर ही, ठीक है, कन्फर्मेशन नहीं है, इसलिए सारी जिंदगी उसके ऊपर रिग्रेट रहना चाहिए, सारी जिंदगी उस पर तौबा इस्तगफार करनी चाहिए। और आपको पता है कि नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं, गुनाहों को मिटा देती हैं। तो अब जितनी दौड़ उसने गुनाह में लगाई थी उससे ज्यादा तेजी से दौड़ नेकी में लगाए ताकि वो गुनाह मिट जाए। इसलिए हम अल्लाह से अच्छी तो उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाने वाला है, लेकिन फिर भी सारी जिंदगी उसके ऊपर तौबा इस्तगफार करे, सारी जिंदगी उस पर निदामत करता रहे और कभी पलट के ना जाए, ठीक है। नॉट इवन इन सऊदी में मुझे नहीं पता कि इस वक्त क्या इस तरह की है, मगर पहले का मुझे पता है कि वहां पे रजम की सजा दी जाती थी। अब मुझे इस टाइम का नहीं पता, मुझे कुछ साल पहले का तो पता है कि हाँ होती है, अगर कोई जाके इकरार कर ले, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जब आपको कोई कहेगा, यहाँ पे अब किसकी बारी नहीं आई, इशरत आप बताएंगी कि अगर आपको कोई कहे कि सूरह नूर के अंदर तो कंवारे की सजा कोड़े लगाना है 100 कोड़े, आप कैसे साबित करेंगे कि एक साल रजम, एक साल कैद की सजा भी है?
तो उसके बाद इसमें ये हदीस से साबित होती है ना? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
जी कौन सी हदीस से साबित होता है
जो अब हम पढ़ रहे हैं ये हदीस? इससे इसमें है ना लिखा हुआ 1102 इसमें है, 1103 में है उस्तादा, जिलावती की सजा मिलनी चाहिए।
बयान करेंगी
जी उस्तादा?
बयान जी नंबर
वो एक साहब आए थे, साहबी आए थे, उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने जहाँ वो काम करता है उसके मालिक के बीवी के साथ जिनाह कर लिया है, तो उन्होंने कहा कि उसके फिदिये में 100 बकरियां और एक खादिम दिया। फिर अहले किताब वालों से या अहले इन वालों से पूछा कि मेरे बेटे को 100 कोड़े और एक साल की जिलावतनी की सजा मिलनी चाहिए, और उसकी बीवी जो शादीशुदा थी उसको रजम किया जाए। ये कुंवारे थे, वो शादीशुदा थी वो औरत।
शाबाश, तो इस हदीस से, इस हदीस को नोट कर लें कि इस हदीस से हमें कंवारे की सजा भी बड़ी अच्छी तरह पता चल जाती है और शादीशुदा की सजा भी बड़ी अच्छी तरह पता चल जाती है, तो इसमें फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहती अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये हदीस दोनों की सजाओं को बिल्कुल वाजे कर देती है, बिल्कुल क्लियर कर देती है, इसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो जो फर्क है ना दोनों की सजाओं में वो इस हदीस से हमें पता चल जाता है। इरम ये आप बताएंगी कि अगर कोई मुसलमान हो और वो काफिर हो और वो मुसलमान इस्लामी मुमलिकत में रहता हो तो क्या उसके लिए भी यही सजा होगी?
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सर आपने कहा सजा काफिर है, वो मुसलमान मुल्क में रहता है, वो अगर काम करता है तो उसके लिए भी यही सजा
है? इस्लामी मुमलिकत है जिसमें इस्लामी शरीयत नाफिज़ है, तो लेकिन वो खुद काफिर है, तो क्या उसके लिए भी यही कायदे और कानून होंगे?
सदा बिल्कुल, क्योंकि ये तो एक माशरे में बुराई फैलने वाला काम है ना, तो जहाँ तक मैं समझती हूँ उसको भी यही सजा मिलेगी, क्योंकि वो माशरा इस्लामिक है, इस्लामिक मुल्क में रह रहे हैं, तो कानून तो उसी मुल्क का फॉलो करना होगा।
बिल्कुल सही है कि ये सजा अगर कोई गैर मुस्लिम भी किसी मुसलमान मुमलिकत में रहता है तो उसको भी यही फॉलो करना पड़ेगा, उसको भी यही सजा मिलेगी जो कि एक इस्लामी मुमलिकत की सजा है, वो उसके ऊपर भी लागू होगी, उसको भी इस मुल्क में रहते हुए वही चीज को फॉलो करना है। और इसके अंदर दलील के तौर पे आप ऐसे दे भी सकते हैं कि ये जो 1104 हदीस है इसमें यहूदी के ऊपर भी वही चीज नाफिज की गई। वैसे तो वो इसमें तौरात में भी है, लेकिन फिर भी अगर हम वैसे भी देखें तो वही सजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए भी तजवीज करते। अच्छा, फिर यहाँ पे समिया अख्तर आप बताएंगी, हदीस नंबर 1105 में उन्होंने पूछा था कि सूरह नूर से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम किया या बाद में, ये क्यों पूछा?
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। ये इसलिए कि वो सूरत नूर का जो मतलब हुक्म उन्होंने मतलब पूछा कि ये सिर्फ तौरात का हुक्म था या कुरान में भी इसका हुक्म आ चुका था, तो ये बयान किया जाता है कि कुरान में भी उसका हुक्म आ चुका था, लेकिन उनकी तसल्ली के लिए कि हम सिर्फ अपना हुक्म आप पर लागू नहीं करते, अल्लाह का हुक्म तुम्हारी अपनी किताब में भी है। जब दो जगह से तस्दीक हो गई तो फिर मतलब जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि वो चोर को पकड़ने के लिए कि तुम्हारी शरीयत में इसका क्या हुक्म है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शरीयत का भी और उनकी अपनी शरीयत के मुताबिक उनको सजा देने के लिए उनकी तस्दीक भी मांगी थी। तो सूरत नूर के नाजिल होने के बाद ये दी गई उनको सजा।
एक और शाहदी, आप जरा इसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगी।
ये इसलिए फरमाया था कि ये 4 या 5 हिजरी को ये वाकया पेश आया था, जबकि रजम बाद में किया गया था।
अच्छा, और कौन रह गया? शहनाज आप बताएंगी।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम अलैकुम जी। मुझे लगता है क्योंकि सूरत नूर में गैर शादी शुदा की वो जिना के बारे में है, और यहाँ पे वो मेक श्योर करना चाह रहा था कि ये
शाबाश। यही मैं आप लोगों को देखना चाहती हूँ कि आप सब एक ही हदीस पढ़ रहे हैं लेकिन सबकी अंडरस्टैंडिंग फर्क है। देखिए, उन्होंने यहाँ पे इसलिए पूछा कि सूरह नूर में जो कंवारा था उसकी सजा है, लेकिन वहां पे कंवारा नहीं लिखा हुआ, ठीक है, जानी और जानी लिखा हुआ, सही है ना? अब तो आप पढ़ चुके हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने क्लियर है कि वो क्या वहां पे लिखा हुआ। अब ये था कि क्या वही सजा शादीशुदा के लिए भी है या नहीं, तो पूछा कि शादी यानी जो सूरह नूर से पहले रिजम किया गया था या बाद में। अगर तो बाद में भी किया गया, इसका मतलब है कि वो कंवारे की सजा है और बाद में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंटिन्यू किया है। अगर पहले सिर्फ करते थे तो बाद में सूरह नूर उतर आई तो उसके बाद इसका मतलब है सब कोई कोड़े ही लगाए गए, रिजम तो किसी को भी नहीं किया गया, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो कंवारे की सजा है? जस्ट टू मेक श्योर कि क्या वो वाकई कंवारे की सजा और शादीशुदा की सजा रजम ही रही, बाद में भी रही या नहीं रही, ये कंफर्मेशन कैसे मिलनी थी? जो लोग कहेंगे कि भाई वहां पे जो अमूमी है सजा जानी और जानिया का लिखा हुआ, कोई ये नहीं लिखा हुआ कि शादीशुदा का है या नहीं, अब इस चीज की कंफर्मेशन कैसे होगी? ये पता चलना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बाद में भी रजम किया था या नहीं किया था। अगर तो बाद में किया था इसका मतलब है कि वो सजा सिर्फ कंवारे की है, क्योंकि बाद में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजम कराते रहे हैं। ये बात सबको क्लियर हुई है या नहीं? ये 1 टाइप करें, मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, अच्छा, अगर किसी को नहीं समझ आई तो अभी भी मेरे से पूछ लें। अच्छा, फिर हम आगे देखते हैं। 1 more time। अच्छा, मैं समझा देती हूँ। देखिए, सूरह नूर के अंदर जो आयात उतरी उसमें स्पेसिफिक ये नहीं कहा गया कि ये कंवारे की सजा है, ठीक है, स्पेसिफिकली नहीं कहा गया। अब कैसे पता चला कि वो कंवारे की ही सजा है? वो वैसे पता चलेगा कि अगर उसके उतरने के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजम करते रहे हैं तो इसका मतलब है वो कंवारे की सजा थी। रजम की सजा तो एज इट इज चलती ही रही, सूरह नूर की आयत उतरने के बाद भी चलती रही कि नहीं चलती रही, यही डिफाइन करेगा ना कि क्या वाकई शादीशुदा की सजा रजम ही रही, या फिर हो सकता है कि सूरह नूर की आयत उतरने के बाद रजम की सजा ना रही हो, अब कुछ और चेंज हो गई हो। لیکن جب پتا چلا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی رجم کرتے رہے.
اچھا
سر آ چکے ہیں
تو
انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.